ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी क्या सुना? मैं बाबा का, बाबा मेरा है, अर्थात बाबा और मैं कंबाइंड हो जाए, है ना। अब कंबाइंड स्थिति बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति है। सदा मैं बाबा में खोई रहूं, बाबा मेरे में रहे, दोनों का एक दूसरे के साथ इतना प्यार और स्नेह और इतना एक दूसरे के प्रति लगाव हो, वो तभी हो सकता है जब हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होगी, पुण्य कर्मों का खजाना होगा। क्योंकि इतनी महान हस्ती को हम अपना बनाना चाहते हैं और उसका बनना चाहते हैं, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध हो जाए, जो वो मेरे से दूर ना हो, मैं उससे दूर ना हो। तो ऐसी सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जरूर होनी चाहिए और पुण्य कर्मों का खाता भी जरूर होना चाहिए। साथ साथ जिस खुदा दोस्त को हमने अपना दोस्त मित्र बनाया, वो निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है, तो उस निराकार पिता के रंग में रंगने के लिए हमें भी अपने आप को इस शरीर के बांध से न्यारा प्यारा बनाना, डिटैच होना होगा। अगर हम अपने इस चमरी और दमरी के बांध में रहते हैं और चाहते हैं कि हम उस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें, तो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जब गीत बजते हैं तब हमारे हाथ पांव चलते, परंतु सदा काल के लिए हमारा मन उन्हीं के साथ नाचता रहे, खुश रहे, उन्हीं के साथ गुनगुनाता रहे, वो तभी हो सकता है जब हम उनके समान अपनी मनोस्थिति को बना लें। जब उनको हम अपना संसार और परिवार बना लें, हमारे जीवन के हर पल में वो हमारा साथी और सारथी होकर के रहे, तभी हमारी मनोस्थिति में वो सदा वास कर सकता है। उसके लिए मन की स्वच्छता, हृदय की शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सत्यता और स्वच्छता का वास हमारे अंदर नहीं है, तब तक वो सत्य स्वरूप परमात्मा पिता हमारी सदा यादों में नहीं रह सकते। क्योंकि उनका फरमान है कि जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे ही जो मेरे बच्चे अपने आप को प्योर सोना, सत्व प्रदान, सशक्त बना लेंगे, मैं उन्हीं के पास बार बार खेंचा हुआ चला आता हूं या उनके साथ अंग और संग में रहता हूं। जैसे आप देखिए, गणेश का मतलब कंबाइंड स्वरूप का मतलब क्या है? कंबाइंड माना मैं और मेरा, मेरा कौन? एक बाबा है ना, उनके साथ हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हो जो संसार की कोई ताकत उनसे हमको दूर ना कर सके, ना वो हमसे दूर जा सके। और इस कंबाइंड स्वरूप का आधार, अधिकार और प्यार, कंबाइंड ही अधिकार और प्यार का सूचक है। आप देखेंगे संसार में किसी का किसी से कुछ प्यार हो जाता, चाहे वो कितना दूर होगा तो भी उसका अधिकार और प्यार उसके साथ बना रहता है। वो टाइम टू टाइम अपना अधिकार भी जमाता और प्यार भी प्रसारित करता है। लौकिक में भी आप देखेंगे जिसका जिसके साथ प्यार होता उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। परंतु प्यार की कंडीशन क्या होती? प्यार स्थाई कहाँ रहता? जहां विचारों की, संस्कारों की समानता हो, स्टेटस की, स्थिति की समानता हो। और आज हम दीवाने प्यार करने चले अपने उस दिलवर के साथ, दिलाराम के साथ। अब दिलाराम तो निराकार है, निर्विकार है और निरहंकार है, और हम उसको अपनी दिल देना चाहते हैं, उसको अपने प्रेम की डोरी में बांधना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ तो, जैसे संसार में भी जिसका जिससे प्यार होता तो उसे कुछ तो त्याग करना ही पड़ता। बिना त्याग के उसको प्राप्तियां नहीं हो सकती जो वो चाहता है। ठीक इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम अपने प्रीतम को अपने प्रेम की डोर में बांध ले और कंबाइंड स्वरूप में रहे, मैं और मेरा एक दूसरे के नजदीक रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से लेन देन दिल की करते ही रहे। तो वो तब हो सकेगा जब हमारी मनोस्थिति उनके अनुकूल बनती जाएगी। अब वो मनोस्थिति कैसे बनेगी? जब हम दे के धर्मों से, दे भान से, दे के पदार्थों से, दे के संबंध में आने वाले वैभवों से, सभी प्रकार के आकर्षणों से अपने आप को दूर दूर करके एक ही आकर्षण में रहेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे आप देखेंगे मीरा, मीरा का मिसाल हमारे सामने है कि उसका गायन क्यों है? उसका गायन इसलिए है कि उसने श्री कृष्ण को ही अपना सखा, साथी, बंधु सब कुछ मान लिया और उसी के साथ ही दुनिया की कोई परवाह ना करके, कोई लोक लाज की परवाह ना करके उसको ही अपना सर्वे सर्वा मानकर उसी के साथ नाचती गाती और तपस्या करती रहती, उन्हीं के भरोसे पर अपने जीवन को इतने तक समर्पित कर दिया जो विष के प्याले को भी दूध समझ के पी लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से हम सब सच्ची प्रेमिका है, हमने प्रेम किया है तो डरना क्या है? और क्या कहते हैं, प्रेम के साथ साथ हम फिर सोचते हैं कि हम ऐसे सोच सोच करके क्यों जीवन जिए। तो क्यों नहीं अपने जो ये संसारिक लोक लाज हमें उस सच्चे प्रेम के अंदर विघन डालती है, तो उस लोक लाज को थोड़ा एक साइड रखा। जो असली लोक लाज है, हमारी असली लोक की क्या लाज है कि मैं कौन, मैं किस लिए, मैं किसकी, ये लोक लाज है। आप देखिए ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जब उस खुदा को अपना दोस्त बनाया तो उस दोस्त ने उनको हर मुश्किल में साथ दिया और चरती कला का अनुभव कराया। चरते कदमों में उनके पांव आगे बढ़ते बढ़ते संपूर्णता की ओर पहुंच गए, संपन्न और संपूर्ण बनकर के आज हमारे सामने एक मिसाल बनकर के गए, मिसाल है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हमारे हृदय के अंदर ये इच्छा जागृत हो गई कि खुदा को मुझे अपना दोस्त बनाना है या खुदा का दोस्त बनकर के रहना है ना, दोनों एक साथ, दोनों जब, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। खुदा मुझको प्यार करे और मैं कहूं नहीं मुझे तो तुझसे प्यार नहीं करना, नहीं, या मैं कहूं मैं तेरे को प्यार करती और वो कहे ठहर ठहर अभी तू थोड़ा ठहरो ना, ऐसा नहीं है। प्यार में एक दूसरे का, दोनों का एक समन्वय होता है, संकल्पों का एक साथ समन्वय होता है। तो जब हम उससे प्यार करना चाहते हैं, खुदा दोस्त बनना चाहते हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को अपने दिल को सच्चा, तन को सच्चा, मन को सच्चा, शरीर को सच्चा, सत्तर संस्कारों को सच्चा में बनाना ही होगा। जब तक हमारा तन मन धन वचन कर्म संस्कार सत्यता का वास नहीं होता, सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होते, तब तक उस सत्य के साथ हम कंबाइंड नहीं रह सकते, है ना। परंतु कंबाइंड जीवन में बहुत आनंद है। जब हमारे को ये अनुभूति आ जाए कि सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है, मेरा सारथी है, तो बताइए कितनी हमारे अंदर सुषुप्त हुई शक्तियां जागृत हो जाएगी और हमारे जीवन में एक ऐसी आशा, एक ऐसा उमंग उमड़ने लगेगा, एक ऐसा आनंद उमड़ने लगेगा कि मेरा साथी कौन है। अभी भी आप देखेंगे जब ये गीत बजता है तो हम सबके हाथ पांव नाचने लगते हैं, अपने आप ही नाचने लगते हैं, हम नाचने की कोशिश नहीं करते। जब उस एक एक गीत की गहराई में हम जाते हैं तो बैठे बैठे नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं, उसके प्रति भाव विभोर हो जाते हैं। सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं, भावना अपना काम करती है, विवेक अपना काम करता है और अनुभव अपना काम करता है। तो जहां भावना विवेक और अनुभव है तीनों को हम मिला करके चलते हैं और अपने आप को सत्य स्वरूप शाश्वत स्वरूप आत्मा रूप में स्थित करते हैं और हमारे जीवन के अंदर आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय की नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही हमारा गहरा संबंध उसके साथ जुड़ता है। क्योंकि जैसी नींव है आत्मनिश्चय की, आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आत्मा एक परमात्मा पिता की संतान है जो सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सबका कल्याण करने वाला है। उसके साथ आत्मा का योग जुड़ गया, कंपेनियन बन गया, कंपनी हो गई, तो हमारा जब खुदा दोस्त है, हमारी कंपनी है, हमारा कंपेनियन है, तो बताइए फिर हमारे को किस बात की कमी महसूस होगी। क्योंकि जिसको मैंने दोस्त बनाया वो सर्व विभूतियों का मालिक है और उसकी मैं क्या हूं, प्रीतमा हूं, उससे योग लगाने वाली एक बच्चा भी कहो, क्योंकि मेरे सर्व संबंधों का रस मुझे उस एक से लेना है। परंतु वो संबंधों का रस या मेरे सारे संबंध उसके साथ हो, वो तभी हो सकते हैं जब मैं एक एक संबंध को सामने रखकर और जहां मेरा विशेष बुद्धि जाती है वहां से बुद्धि को हटाकर उस संबंध को उसके साथ जोड़ू और दृढ़ संकल्प करूं कि बाबा मुझे आपसे बालक का संबंध का अनुभव करना है, मुझे आपसे पिता का संबंध का अनुभव करना है। मुझे याद आता है जब मैं शुरू शुरू में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आई तो यही बुद्धि के अंदर आता था कि लोग कहते हैं तू मात पिता है, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं तू मात पिता है, पर हमें कैसे महसूस हो कि तू मात पिता है या नहीं है। हमें तभी महसूस होगा जब आप हमारे को उसका अनुभव कराएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने अनुभव से ये बात आपको कह रही हूं कि एक बार बहनों ने यही कहा कि हम भगवान हमारा माता पिता है, उससे हम आपको मिलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है मिलाते हैं, तो आज हम भी संकल्प करते हैं कि हमारे को उसको मिलना ही है, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है उसको पाने की। तो क्या हुआ, 12 घंटे का वहां योग का प्रोग्राम रखा गया और उस योग के प्रोग्राम में लक्ष्य एक ही है कि भगवान से मिलना है ना। तो जब ये लक्ष्य में दृढ़ता है और वत्सल्य प्रेम है, सच्चे हृदय की जिज्ञासा है, तो हम दूसरे दिन बहुत अच्छी तरह से स्नान पानी करके बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर के वहां गए और कहा, बिल्कुल सिंपल वातावरण था और वहां पर हम 12 कन्याएं 12 घंटे के योग के लिए प्रभु प्राप्ति के लिए बैठ गई ना। अब एक घंटा बीत गया, मन नहीं लग रहा, 2 घंटे बीत गए, मन स्थिर नहीं हो रहा, 3 घंटे बीत गए, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे वत्सल्य प्रेम सच्चे हृदय के उद्गार बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। और हमने देखा हमारे साथ जो और कन्याएं बहनें बैठी थी वो एक एक करके कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है, परंतु अपने पास एक ही दृढ़ संकल्प है कि आज तू है या नहीं है, तू है तो उसका अनुभव कराना ही होगा। तो क्या हुआ, जहां चाह है वहां रास्ता जरूर मिलता है, जहां जिज्ञासा है वो जिज्ञासा जरूर पूर्ण होती ही है। तो हम एक ही शुद्ध संकल्प में बैठे हैं और बहुत प्यार से बहुत स्नेह से सब बातों से अपने आप को हटाते 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 ये अनुभव कर रहे हैं कि अब इंद्रियां शांत शांत शीतल शीतल, मन एकाग्र होता जा रहा है ना? और 6-8 घंटे बैठने के बाद फिर ऐसा महसूस होने लगा कि किसी ने आकर हमारे सिर पर हाथ रखा है और उसने बोला, बच्ची कैसे हो। और जैसे ये आवाज कानों ने सुना तो कहते हैं, जिसकी तुझे तलाश है उसकी मुझको भी तलाश है, मेरे को तेरी तलाश, तुझको मेरी तलाश, दोनों की तलाश पूरी होगी तो क्या होगा। मेरे आंखों में से आंसू धाराएं बहती गई, बहुत आनंद 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 का अनुभव कर रही हूं। इतने आनंद में मैं घंटों ही खो गई। फिर दादियों ने सोचा कि ये बच्ची तो पता नहीं कहां, उस समय मेरी आयु मैं समझती 18-19 साल की होगी है ना। तो फिर दादियों ने मेरे को थोड़ा स्नेह प्यार देके उठाया। पर मेरी बहनों, मैं आप सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि वो जो सिर पर हाथ रखना, दिव्य नेत्र खोलना, और साथ साथ ऐसा हो गया कि उसी टाइम पर रोजाना जैसे लाइट ऑन करो अंधकार चला जाता है, प्रकाश आ जाता है, ऐसा हमारे को रोज का अनुभव होने लगा। रोज योग में बैठे घंटों ही बैठे रहते थे, पहले योग समाधि के ऊपर तपस्या ओम की ध्वनि और योग अवस्था तपस्या तप में ज्यादा टाइम देते थे, आज तो एक घंटा भी कोई बैठता है तो हाँ हिल विल करना शुरू कर देते हैं, परंतु घंटों ही बैठे रहते, पता नहीं कौन सी चुंबकीय शक्ति आके खेंसती और बहुत प्रकार का अनुभव करती। मेरे को तो ऐसा एक नेचर बन गई, मैं अब बोलने लगी बाबा को, तू माँ है तो कैसे है, तू बाप है तो कैसे है, तू सगा है तो कैसे है, तू टीचर है तो कैसे, उसका अनुभव करा। मैं आज ये बातें आपको अपने अनुभव से बोल रही हूँ, बाबा ने सब कुछ अनुभव कराया। और जब वो अनुभूतियां होने लगी तो आप समझते हैं बुद्धि संसार से अपने आप उठने लगी, किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की, अपने आप संसार से विरक्त भावनाएं आने लगी, क्योंकि वो खींचने वाला खींच रहा है। कभी तो ये अनुभव करा रहा है कि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूं, मेरे नेत्रों में से एक लाइट निकल रही है, समस्त विश्व के अंदर फैल रही है, और कभी ये अनुभव करा रहा है कि मैं बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु स्वरूप हूं। मुझे याद आता है कि उन दिनों में ज्ञान दिया जाता था अंगुष्ठाकार है, परमात्मा भी अंगुष्ठाकार है, आत्मा भी अंगुष्ठाकार है, परंतु मैं जब बाबा की याद में बैठी थी तो एक दिन मुझे बाबा ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु स्वरूप हूं। तो जब मैंने उस ज्योति को देखा तो उसमें मुझे इतना आकर्षण आया, इतनी आकर्षित हो गई मैं, इतनी मस्त हो गई उसको देखने में, पर फिर भी समझ में नहीं आया कि परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, क्या है। चार दिन के बाद बाबा की वाणी के अंदर आ गया, बच्चे मैं भी अंगुष्ठाकार नहीं, आत्मा भी अंगुष्ठाकार नहीं है, आत्मा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु स्वरूप है। तो बताइए जब सच्चा प्यार हो जाता है तो वो मालिक वो प्रीतम भी अपनी डोर में ऐसा बांध लेता है जो रक्षक और पालक का काम भी करता, साथ में सर्व मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। ऐसा हम सब ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अनुभव किए, जिस अनुभव के आधार से अपने आप संसार से निकल गया, बुद्धि निकालना नहीं पड़ा। आज क्या है, हम लोग थोड़ी स्थूलता में चल गए हैं, बाहरी मुक्ता में चले गए हैं, अंतर्मुक्ता की तरफ ध्यान हमारा थोड़ा कम है, और जो सच्ची लगन की एक अग्नि तपी रहे वो थोड़ा कम है, जिसके कारण जिगरी स्नेह हमारा उसके प्रति नहीं उमड़ता, और हमें बाबा मेरा साथी और सारथी है, कंबाइंड है, मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जैसे दादी प्रकाशमणि हमेशा बोलती कि मैं कभी भी बाबा के बिना अपने आप को महसूस ही नहीं करती, बाबा चला भी गया, अव्यक्त हो गए, सब कुछ हो गया, तो भी बड़ी डंके के जोर से बोलती कि मैं कभी अपने आप को एक सेकंड भी बाबा के बिना महसूस नहीं करती। तभी आप देखेंगे वो प्रकाश स्तंभ की तरह रहे, उनका चेहरा, उनका व्यवहार, उनके कर्तव्य, उनकी पालना पूरी लाइट माइट हाउस की तरह रही। कैसे रही, कि उनकी सूक्ष्म तार, जैसे आप सबकी सूक्ष्म तार अपने बाल बच्चों पोते दोतों के साथ रगे जुटी हुई है, उनकी सूक्ष्म तार उसी प्रीतम के साथ, उसी लाइट हाउस के साथ लगी रहती, जिसके कारण वो करंट उनके जीवन में दिखाई पड़ता था। ऐसे जानकी दादी को देखो आप, देखने से क्या लगता है, देखा जाए एक छोटी सी डॉल सी दिखाई देती है दादी अभी, है ना, परंतु जब वो बैठती है, जब वो बोलती है, जब उसके हाथ पांव नाच चलते हैं, तो क्या लगता है। और अभी आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो उनके पास सिर्फ दो ही शब्द रह गए हैं, मैं कौन, मैं किसकी, और सब बातों से वो ऊपर उठ गई है, और सब प्रकार के खिंचाव, लगाव, झुकाव, टकराव, कौन क्या कर रहा है, उसमें उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, मौलाई मस्ती में मस्त है। तो ऐसी मौलाई मस्ती हम सबके अंदर होनी चाहिए ना, तभी तो वो कंबाइन रहेगा। हम और मस्तियों के अंदर रहते हैं, है? तो जब और मस्तियों के अंदर रहते हैं हम, और चाहते हैं मौलाई मस्ती का रंग चरा रहे, या योगी के लिए कहा जाता है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो हम देखते थे मम्मा, बाबा, दीदी, दादियां अपना रंग प्रसारित करती, कब, जब परमार्थ को प्राप्त हुई हुई है। योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, उनका अंग अंग शीतल हो जाता, मम्मा से चंद्रमा की तरह भासना आती थी, मम्मा जहां बैठती थी शीतलता का प्रवाह आता था, और ऐसे लगता था कि जाकर के मम्मा को पकड़ ले और मम्मा की गोद में चले जाए। परंतु मम्मा कहां कहां बहुत सावधान भी करती थी, जब कोई ऐसा वैसा व्यक्ति जो पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करता होता, वो अगर मम्मा के नजदीक आता तो उनको कहती थी, काली हूं काली, बल लूंगी, अगर बल देने की हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, आज अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या हम मम्मा जैसी शेरनी शक्तियां हैं, या कुछ बोलू बोलू, मैं करने वाली है, क्या है, हाँ क्या है, शिव शक्तियां, हम शिव शक्तियां, शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप है, ठीक है, शिव और शक्ति, शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप है। इस कंबाइन स्वरूप में अगर स्थित है तो यशोगान है, मान्यता है, सत्कार है, दिव्यता है, रूहानियता है, परंतु जहां शिव अलग हो गया, शक्ति अलग हो गई, तो वो शक्ति, वो दिव्यता नहीं रहेगी। तो हमेशा अपने आप में ये बात बोलना चाहिए, अपने आप के अंदर ये उमंग उत्साह पैदा करना चाहिए, हे शिव तू मेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, तू और मैं कंबाइंड है। जब तू और मैं कंबाइंड है तो शिव का माना क्या है, कल्याण 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 कल्याण, शुभ शुभ शुभ। तो मेरे कहां शुभ होना चाहिए, मेरे दिल में भी शुभ, मेरे वचन में भी शुभ, मेरे कर्म में भी शुभ होना चाहिए। कल्याण, मेरा भी भला, तेरा भी भला, समस्त विश्व का भला हो, सद्भाव और सद्भावना ही निकलनी चाहिए हमारे अंदर से, वो किरणें, वो आकाश, वो निकलना चाहिए। परंतु आज मैं शिव शक्ति, शिव शक्ति के जीवन से, उसके श्वास से, उसके संकल्पों से ये प्रवाह प्रवाहित होता है। थोड़ा सोचिए, जब तक हम ऊंची स्मृतियों में अपने आप को समृद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऊंची स्थिति, क्योंकि उस निराकार ज्योति स्वरूप को अपने अंग संग रखना या उसके अंग संग में रहना, ये बहुत ऊंची स्टेज है। इस ऊंची स्टेज में अपने आप को स्थित रखने के लिए मुझे अपना अमृत वेला भी बहुत अच्छी प्रकार से जागती ज्योत होकर के शेरनी शक्ति बनकर के बैठने के लिए बैठना चाहिए। और हम लोग अमृत वेले उठते हैं तो क्या करते हैं, बैठते याद में बैठे 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 कहीं और विश्रामपुरी के अंदर कहीं और दुनिया की सैर करने चले जाते। क्या उस समय समझते हैं कि ये अमृत वेला शुद्ध भवन है, जो मेरा बाप कहता है, जो मेरा कंबाइंड स्वरूप बोलता है कि लाडले जागो और समस्त विश्व को लाइट दो, माइट दो, शक्तियां प्रदान करो। इसी तरह से मेरी सारा दिन की दिनचर्या में भी मेरा कंबाइंड, मेरा स्वरूप, मेरा बाप और मैं दोनों साथ साथ चले तो वो तभी हो सकता है जब मेरी दिनचर्या भी श्रीमत के अनुकूल हो, मेरे घर का वातावरण भी आश्रम के अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा तेरा घर मंदिर है, तू मंदिर के अंदर एक मूर्ति है। तो क्या सचमुच मूर्ति होके रहते हैं या मूर्ति कभी कभी काली मूर्ति बन जाती है, कभी गोरी मूर्ति बन जाती है, कौन सी मूर्ति बनती है ना? कभी इस वाणी के द्वारा कभी कुछ बोलने लग जाते हैं हम, तो वो कैसे वास करेगा? क्योंकि वो वहां वास करता है जहां स्वच्छता है। आप कहां बैठती हैं, स्वच्छ स्थान बनाकर, थोड़ी सी भी धूल बट्टी होगी तो कहेंगे इसको थोड़ा ठीक करो तब मैं बैठूंगी, है ना? ठीक किसी तरह से बाबा का वास जहां हृदय में बहुत स्वच्छता है, बहुत शुद्धता है, वह अब उसको साथी को साथ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जो भोजन बनाते हैं उसकी याद में रह के बनाए, याद में रह करके बनाने के बाद भोग लगाते हैं। अब इतने सारे 6,000 माताओं के बीच में, 5,000 माताओं के बीच में मैं पूछूं कि सबके घरों में भोग लगता है, हाथ खड़ा करो। क्योंकि हम निरंतर योगी जब तक नहीं बने, निरंतर उसको अपने साथ अंग संग में नहीं रखा, निरंतर उसको दिन के चारों पैरों के अंदर साथ साथ नहीं लेकर के चलेंगे, तब तक हमारी मनोस्थिति उज्ज्वल नहीं रह सकती, श्रेष्ठ नहीं बन सकती। और तब तक हमारे पास संचित धन नहीं रहेगा। अगर संचित धन मेरे पास नहीं है तो मैं संपन्न नहीं बन सकती। अब मैं इधर से कमाती हूँ, रोज क्लास करती, रोज योग लगाती, रोज सेवा करती, रोज लोगों को ज्ञान दान करती, सब कुछ करती, पर इधर कोई ना कोई भूल कर लेती, विकर्म हो जाता, छोटी मोटी बात हो जाती, तो जो मैंने कमाया वो गवाया और खाया, मेरे पास संचित धन नहीं है। तो बिना पुण्य का खाता खजाना हुए बिना, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी के बिना, मैं उसको अपने साथ नहीं रख सकती। मैं कंबाइंड रूप में नहीं, वो मेरे कंबाइंड, मेरा दोस्त बनकर के नहीं चल सकता, मेरा माता पिता बनकर के मुझे रास्ता आगे का नहीं बता सकता। तो मुझे यही शुभ इच्छा रहती है कि पग पग में वो मेरे साथ हो और मेरे को चलने का रास्ता बताए। तो उसके लिए तभी हो सकता है हमारी उंगली पकड़ के, आप देखेंगे भक्ति काल में हम लोग एक बात बोला करते, हे प्रभु तो आ करके एक बार मेरी उंगली पकड़ ले, कहते है ना, कहते है ना। अब यहां आकर के दूसरा हो गया, वो कहता है एक बार तू मुझे अपनी उंगली दे दे, एक बार तू मेरे आगे आ जा तो मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, है ना। वो वहां हम उसकी उंगली के लिए इतना प्रयास करते, अब एक बार मेरी उंगली पकड़ ले और आज वो हमारा हाथ पकड़ ले, हमारे को साथ दे और साथ दे करके साथ निभाए तो कितना अच्छा है। बाबा एक बार बोलते थे कि मेरे तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जो बाबा के साथ रहना चाहते हैं, बाबा के साथ चलना चाहते हैं, बाबा का साथी बनना चाहते हैं। दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को अपना साथी बना लिया है। तीसरे बच्चे जो बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना चाहते हैं। तो आप कौन से बच्चे हैं? साथ चलने वाले, साथी रहने वाले या कंबाइंड रूप में साथ चलने वाले? कंबाइंड रूप में साथ चलने वाले। तो कंबाइंड रूप में साथ तभी चल सकेंगे जब उनके अनुकूल अपने जीवन की धारा को बना लेंगे, अपने जीवन को उसके अनुकूल ढाल लेंगे, उसी सांचे के अंदर डालते जाएंगे, एक दिन हमारा संकल्प पूर्ण हो सकता है। और सच्ची स्नेह के अंकुश हमारे अंदर बढ़ते ही रहने चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सब कुछ है, जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं है। इस बार मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक माता के गर्भ में, आप जैसी माताओं के गर्भ के बाहर तीन बुड्ढे बैठे हुए थे, बुजुर्ग संत लोग। माता घर से बाहर निकलती है तो कहती है महाराज आओ मेरे घर को पवित्र करो। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि हम किसी के घर में ऐसे नहीं जाते, जब घर का मालिक घर के अंदर होता है तब जाते हैं, तो जाओ तुम देख के आओ अपने घर को, सब परिवार मालिक सब बैठे। तो वापस आके बोलती है सब है चलो। तो वो क्या बोलते हैं तीनों, एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता, तीसरे का नाम है प्रेम। तो बताओ तुम्हारे घर में कौन चले पहले? कहती है मैं घर से पूछ के आती हूं। तो जब घर गई तो घर में अपने पति से पूछ लिया कि एक संत जो धन है, जिनका नाम धन है, वो उनको बुलाऊं? तो पति बड़ा खुश हो जाएगा, हो गया, धन आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, धन आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। पर वो खुद ही बोलती है धन तो नाशवान है, आज है कल नहीं होगा, अगर सफलता आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जहां सफलता है वहां सब कुछ है। परंतु उनकी बहू बहुत समझदार थी, वो कहती है अम्मा जी अगर प्रेम आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। तो उसने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां प्रेम है वही धन है, वही सफलता है। तो बाबा भी प्रेम का सागर है, उसको हम क्या बोलते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और बाबा ने आपको बहनों ने भी ज्ञान पीछे दिया, पहले प्यार से आपको सींचा, याद है वो दिन, याद है हम सबको तो ये याद आता है, पहले प्यार से सींचा। बाबा ने भी पहले प्यार दिया बच्चों को, प्यार से पालना की, फिर ज्ञान देना शुरू किया। तो प्यार एक बहुत बड़ी चीज है, जीवन का सौंदर्य अगर देखना है, जीवन की सार्थकता अगर देखनी है तो प्रेम से देखो, प्यार से चलो। और प्यार से हम जो काम प्यार से कर सकते हैं वो काम रोब से नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी मनोस्थिति को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक एक बात की तरफ ध्यान देना होगा और उस पर फिर चेकिंग करनी होगी, जिस पर हमारी गुलजार दादी इस बात के ऊपर विशेष पुरुषार्थ कराया करती कि चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। क्योंकि जब, और फिर साथ में कहती रिवाइज करो, जब तक वो बात तुम्हारे जीवन की धारणा नहीं बन जाए तब तक रिवाइज करते रहो। क्या रिवाइज करना? जो मुझ आत्मा के मौलिक गुण है उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि भगवान निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है। अगर हमें थोड़ा भी अहंकार है तो वो हमें पसंद नहीं करेगा, है ना? नहीं करेगा ना। और अगर थोड़ा भी विकार है तो भी अंश से वंश बनता जाएगा, विकर्म होते रहेंगे, वो निर्विकार पिता हमको पसंद नहीं करेगा, हमारा कंपेनियन बनकर के नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं उसकी कंपनी में। कल दादी जानकी थोड़ा हंसा रही थी हम लोगों को कि मैं तो मुफत लाल कंपनी में हूं। वास्तव में वो तो एक हंसी की बात है। वास्तव में हमारी कंपनी और कंपेनियन सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्व विभूतियों का मालिक है। उसकी कंपनी, उसके साथ हमने अपने क्या किया है, नाता रिश्ता जोड़ा है। तो सच्चा नाता रिश्ता उसके साथ जोड़ा है, तो उस जोर के अंदर हमारे को एक सच्ची सपूत शिव शक्ति के रूप में प्रसिद्ध करना है कि मैं एक तेरे से वर्षा लेने की अधिकारी हूं। क्योंकि जो अधिकारी होता है, पात्र होता है, उसको ही सब कुछ प्राप्त होता है। हम शिवावा ब्रह्मा बाबा के अधिकारी पुत्र हैं। अधिकार लेना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसके लिए भी मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक राजा था, उसको तीन राजकुमार थे। वो बूढ़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि कौन सा मेरा बेटा उत्तराधिकारी बनने के लायक है या नहीं, इसका कैसे मैं टेस्ट लूं, कैसे मैं समझूं। तो उसने तीनों बेटों को बुलाया और बुला करके कहा कि एक एक हजार रुपया हाथ में पकड़ाया और उनको कहा फलाने दिन फलाने टाइम पर फलाने समय पर मैं चक्कर लगाऊंगा, इस 1,000 रुपए से तुम्हारा महल, तीनों को तीन महल दे, तुम्हारा महल भरपूर होना चाहिए। अब बड़े बेटे ने सोचा 1,000 रुपए में इतना बड़ा मेरा महल है, कैसे बढ़ सकता है। उसने क्या किया होगा, सट्टा खेलना शुरू किया। सोचा सट्टे में पैसा आएगा, महल भर जाएगा। परंतु सट्टा खेलना, राजकुमार कैसे सट्टा खेलेगा, वो 1,000 रुपया भी गया। अब दूसरा बेटा भी थोड़ा बुद्धि उसकी ऐसी ही थी, तो उसने कहा 1,000 रुपए में महल बहुत मुश्किल से बढ़ सकता है। तो उसने क्या किया होगा, गया जमादार के पास, कहा फलाने दिन फलाने टाइम पर सारे शहर का कूड़ा करकर मेरे महल में डाल देना। तीसरा बेटा बड़ा समझदार था, उसने कहा महल बहुत बढ़िया तरीके से भर सकता है। वो गया मार्केट में, कुछ अगरबत्तियां ले आया, कुछ गुलाब के फूल ले आया, कुछ मोमबत्तियां ले आया, कुछ दीपक ले आया। जब उसके बाप के आने का टाइम हुआ, सारे महल के अंदर अगरबत्ती जला दी, मोमबत्तियां जला दी, दीपक जला दिए, गुलाब के फूल बरसा दिए सब जगह पर। अब जब बाप चक्कर लगाने पहले बेटे के महल में गया तो सुनसान पड़ा हुआ है। दूसरे बच्चे के महल के पास गया तो बदबू ही आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। जब तीसरे बेटे के महल में गया तो बहुत दूर से ही चमक रहा है और दूर से ही बहुत खुशबुएं आ रही हैं। तो उसने क्या किया, अपनी चाबी निकाल करके उस छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा दी, अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित कर दिया। तो बड़े बेटे लड़ने लगे, ऐसा क्यों? आप सोचिए, ठीक ये कहानी किसी और की नहीं है, आज बाबा हमको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, चाहता है, चाहता है। तो कैसे बनोगे बताओ, कैसे बनोगे? उसके लिए क्या करना होगा? महल को कैसे बनना है? इस महल को बुद्धि में महल है, ये महल है, मंदिर है, इसको सजाना है हमको दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, दिव्य धारणाओं से, त्याग और तप से सजाना है, उस अलौकिक रंग में रंगना है। तब तो वो कंपेनियन हमारी कंपनी में रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा बीच बीच में, फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो क्या करेंगे उसके लिए? अगर हम सारा दिन इधर उधर की बातें करते 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 अपने श्वास, अपना समय, अपने संकल्प, अपनी एनर्जी उसमें ही वेस्ट कर देंगे तो मेरे पास बचत क्या रह जाएगी, है ना? और अगर हम इधर उधर के गपशप में ही टाइम सारा दिन लगाते हैं तो भी मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो मुझे क्या करना है? अपने आप को उसने गुलाब के फूलों से सजाया और हम क्या करेंगे? दैवी गुणों से अपने आप को सजाएंगे, ज्ञान रत्नों से अपने आप का श्रृंगार करेंगे, दैवी गुणों से अपने आप को सजाएंगे, दैवी गुणों के आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करेंगे और आध्यात्मिकता का ताज पहनेंगे, पवित्रता का, लाइट माइट का ताज पहनेंगे, है ना? तो जब हम, और उसके लिए क्या करेंगे, हम नित्य ज्ञान स्नान करेंगे। क्योंकि जब तक हम नित्य ज्ञान स्नान नहीं करते हैं, जब तक हम नित्य सेवा नहीं करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते हैं, तभी जानकी दादी हमेशा कहती है, सवेरे अमृत वेले से लेकर 8 बजे तक कोई बोलना नहीं, चुप रहना, मौन में रहना, है ना? और अभी तो हम समाप्ति वर्ष की तरफ जा रहे हैं और हमारी शुभ इच्छा है कि हमारा कंपेनियन, हमारा कौन, आज का टॉपिक कंबाइंड रूप में रहे, मेरा मालिक मेरे साथ, तो सदा ज्ञान का मनन चिंतन करो, ज्ञान के गुणों का गायन करो, ज्ञान और गुणों को आपस में एक दूसरे को बांटो और एक दूसरे को अपने से सद्भाव और सद्भावनाएं दो, शुभ भाव और शुभ भावनाएं रखो, फिर देखो आपके जीवन में कितनी श्रेष्ठता और महानता और दिव्यता अपने आप में आ जाती है। कहीं मांगनी ही नहीं पड़ेगी कोई चीज किसी से, मांगने से तो कहते हैं मरना बना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ऐसा बोलते हैं ना। तो हम बाबा से भी क्यों मांगे, हमारा तो अधिकार है ना बाबा के पास, पर अधिकारी बनाए ना अपने आप को, पात्र बनाए, जो पात्र ऐसा बनाए जो बाबा कहे आओ बच्चे ये स्वराज तेरे लिए है, तू स्वराज्य अधिकारी बना, अब राज तिलक का अधिकारी भी तू ही बनेगा। तो राज तिलक लेना श्रेष्ठ कर्मों और श्रेष्ठ पुण्य के खाते के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए जितना गहराइयों में हम जाएंगे उतना हमारा जीवन उज्जवल बनता जाएगा और हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसी हमारी अपने प्रति शुभ भावना और शुभकामना और दृढ़ संकल्प हो कि मुझे कंबाइंड रहना है, मुझे बाबा से एक सेकंड भी अपने आप को अलग नहीं रहना, क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ, वो मेरा दोस्त है, मेरी घनिष्ठ मित्रता है उसके बिना, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। उठते बैठते अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करो, घर परिवार में रहते हुए, कारोबार करते हुए, अंदर ही अंदर अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करो जो आपको फील हो कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ। और फिर अपने आप आपकी चढ़ती कला हो जाएगी जो हम पे अपने जीवन के अंदर अनुभव किया। तो यही शुभ भावनाओं के साथ आप सबको यही शुभ राय दूंगी कि अपने को अकेला मत समझना, सदा मैं और मेरा बाबा सिर्फ गाने के टाइम नहीं, सदा सदा शिव मेरे साथ रहे और मैं सदा उसका शुक्रिया करती रहूं, यही मेरे रोम रोम से आवाज निकले। ठीक है, ओके, ओम शांति शांति शांति।